लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक।
ओम शांति। जो क्वेश्चन आंसर की सीरियल का 107 नंबर है और प्रश्न है कि महा तपस्या कौन सी है, जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए हमें शुरुआत की बात याद आई कि शिव बाबा की पधरनी जब ब्रह्मा बाबा में हुई थी तो बहुत समय तक ब्रह्मा बाबा का रथ शिव बाबा ने लिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो बहुत बुद्धिशाली थे और जो आते जाते थे उनको साक्षात्कार तो होता था, लेकिन फिर भी उनको अंदर से ऐसा होता था कि ये ब्रह्मा बाबा ही बोलता है, शिव बाबा नहीं बोलता है, क्योंकि इतना जल्दी से निश्चय नहीं हो जाता था। तो एक बार अव्यक्त बाबा ने क्या किया कि सभी की ये शंका तोड़ने के लिए एक बहन थी, उसका नाम था पुष्पमणि, पुष्पमणि नाम था, और वो इतनी बुद्धिशाली नहीं थी, समर्पित थी लेकिन मेंटली थोड़ी सी रिटायर्ड थी। क्या कहाँ कैसे बोलना है वो इतना सोच करके बुद्धि से नहीं कर सकती थी। तो 15 दिन तक उनकी मुरली चली और उसमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे होंगी और स्थापना के साथ साथ कैसी विधि होंगी, विनाश की सारी सारी बातें 15 दिन तक बताई। और उस मुरली जब चलती थी तब उसके सामने ब्रह्मा बाबा बैठता था और मम्मा बैठती थी और विजेंद्र दादी बैठती थी और भी बैठते थे। तो वो उस समय भी उन्होंने मतलब कि स्थापना की बातें बहुत विविध प्रकार की बातें सब सुनाया था। और अचानक उसमें अव्यक्त बाप दादा को कहीं काम आ गया तो थोड़े समय के लिए, थोड़ी सेकंड के लिए उसमें से निकल गया, तो वो जैसे अचेतन हो गई। और जैसे आप हम सभी को पता है कि गुलझर दादी में जब बाबा आता है तो गुलझर दादी को खुद को ही वीडियो देखना पड़ता है, खुद को मुरली पढ़नी पड़ती है। उनको पता नहीं होता है, भले रात रात बाबा उनमें रहता है, लेकिन वो कहती मेरे को तो बाबा सुला देता है। इसलिए जब सुबह भी हो जाती है तभी भी दादी जी को देखते हैं आप कि वो एकदम फ्रेश लगती है। उसको ऐसा भी नहीं मैं इतने घंटे तक बैठी हूँ, पांव इधर से उधर, ये सब नहीं होता था। तो जैसे अचेतन हो गई, जैसे सोई वहां, फिर ये लोग चर्चा कर रहे थे कि ये कौन आया, ऐसा कौन सुना रहा है, ऐसे स्थापना की बातें, विनाश की बातें, कैसे स्थापना होंगे, सारी बातें कौन सुना रहा है, ऐसे चर्चा कर रहे थे। और थोड़ी देर में बाबा की पधरन फिर से हुई तो एकदम सीधी बैठ गई और कह रही है, बाबा था इसे कह रहा है कि आप ऐसे सोचते थे कि इतनी सारी बातें कौन बता रहे हैं, तो आपका जो संकल्प था, आप संकल्प कर रहे थे, विकल्प कर रहे थे, बातें कर रहे थे, आपने अभी तक समझा ही नहीं बाबा को, मतलब भगवान को समझा ही नहीं आपने, तो एकदम ये हो गए। ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं बोला था कुछ भी, लेकिन मम्मा और जो ब्रिजेंद्र दादी जी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कैसा, तो बाबा ने मतलब कि एक ये पुष्पमणि समर्पित बहन थी उसमें अवतरित करके सब मतलब कि बताया कि नहीं, ये शिव बाबा का ही काम है और शिव बाबा किसी का भी आधार ले सकता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का आधार तो संपूर्ण लेना था। लेकिन ये बताने के लिए कि लोग समझते थे कि ये कोई ये नहीं है। और इतना सारे 15 दिन की जो मुरली का बाबा ने जो भी सुना है ना, वह भी एक मधुबन की एक बहन के पास है, उनके पास भी बातें मतलब कि ये जब बाबा ने सुनाया था तो उसके बाद उस कभी भी बाबा उसमें नहीं आया। ये शुरुआत की बात है कि यज्ञ में कैसे विश्व परिवर्तन करना है, कैसे होगा, सारी सारी बातें बताई थी। आज का तो महातपस्या की बातें हैं कि महातपस्या ऐसी कैसी होनी चाहिए जिसे विश्व परिवर्तन हो जाए, ऐसा ही है ना। तो दुनिया में तो देखते हैं जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत तपस्या करते हैं, शरीर को तपाते हैं, बहुत तपस्या करने के बाद उसको सिर्फ साक्षात्कार की एक झलक दिखाई देती और साक्षात्कार की झलक में उसको एक वरदान मिलता है। और जितने भी होते हैं वो एक वरदान मांगते हैं, धन संपत्ति नहीं मांगते हैं, लेकिन मृत्यु पर विजय ही मांगते हैं कि हमें कभी मौत आवे ही नहीं, हम मरे ही नहीं, हम अमर हो जाए, ऐसा ही वरदान मांगते हैं। लेकिन यहां भगवान साक्षात हमारे सन्मुख बैठा है, साक्षात बैठा है, साक्षात पढ़ा रहे हैं। तो यहां जो हमारी जो है कि एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा अगर होता है तो हम एक बल एक भरोसा के आधार पर, ऐसा हमारी जीवन में कोई भी परिस्थितियां आती है लेकिन हमें एक के पर दृढ़ता होती है, विश्वास होता है, तो वो विश्वास और दृढ़ता के आधार से लोगों को दिखाई देता है हमारा कितना योग का बल है। तो एक टांग पर की बात नहीं है, लेकिन हमारी वृत्ति में बाबा ही रहे, हमारी हर कर्म में बाबा रहे। तो सच्ची सती तपस्या जब हम करेंगे तभी तो विश्व परिवर्तन होगा, क्योंकि बाबा कहता है कितना भी हम ज्ञान किसी को सुना ले, कितना भी मतलब कि बहुत आगे कितने भी मंच पर हम जाएं, लेकिन चलन और चेहरा, चलन और चेहरा में अगर परिवर्तन नहीं है, चलन और चेहरा व्यवहार हमारा जो ऐसा नहीं है, कौन मानेगा। तो विश्व परिवर्तन का आधार तो स्वयं का परिवर्तन ही है। जितना जितना हम अपने में परिवर्तन लाएंगे उतना उतना विश्व का परिवर्तन होगा। तो तपस्या माना क्या, तपस्या माना कोई भी प्रकार की एक दृढ़ता होनी चाहिए। अगर जितनी जितनी हमारे में दृढ़ता है तो दृढ़ता के आधार से, और दृढ़ता किस में, बाबा जो हमको कहता है, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, श्रीमद के पट्टे पर जब चलते हैं और श्रीमद के आधार पर जब चलते हैं, बाबा जो कहते हैं वो हम करते चले आते हैं, इतनी इतनी ताकत मिलती है। दूसरी बात है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले जो बाबा कहते हैं स्टॉक जमा करो। स्टॉक कैसे जमा करेंगे? स्टॉक जमा करने के लिए स्टॉक जमा होगा तो आखिर में हम किसी को दे सकेंगे, लेकिन स्टॉक जमा कैसे होगा? क्योंकि सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों का स्टॉक हमारे में आ जाए, उसके लिए चार बातें हैं। सबसे पहले है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति माना प्रबल इच्छा हो, बर्निंग डिजायर कहते हैं उसको। ऐसी इच्छा हो उसके सिवाय कुछ दिखाई ना दे। और ऐसी जब हमारी इच्छा हो कि अभी भगवान मिल गया है, तो हर कोई भी प्रकार की इच्छा, क्या कौन सी इच्छा होती है? एक तो एक देह मिला है हमको इस संसार में, देह जो है, देह के लिए इच्छाएं होती है। कौन सी इच्छा होती है? कुछ सुन ले अच्छा, कुछ अच्छा देख ले, कुछ अच्छा कान, हाँ, तो ये सुनने की, देखने की, और ये जीव रस है उसकी, तो खान पान, पहनना उठना, ये सब बाबा कहते हैं कि हद की इच्छाएं होती है, और ये देह की इच्छाएं हैं। दूसरा है कि संबंधियों की, दो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, तो उनके प्रति हमारी जो इच्छाएं होती है, प्राप्तियों की इच्छा होती है उसके प्रति, कि हमको ये कुछ दे करके जाए। किसी के प्रति ऐसा होता है कि हमको कोई नाम मिल जाए, मान मिल जाए, शान मिल जाए, हमें कुछ भी हम उनको समझाए तो हमारा मान मानने लग जाए, या हमारी नामना हो जाए, तो ये कामना होती है, ये हमारी इच्छाएं हैं। और इस प्रकार की सभी इच्छाएं जो होती है, कहते हैं ना कि योगी होता है ना, उसको एक आसन होता है, आसन पर जो बैठते हैं तो आसन जब हिलता रहता है तो उसका योग नहीं होता है। जैसे एक टांग पर होता है लेकिन वो एकदम स्थिर होता है, लेकिन हमारा आसन कौन सा है? हमारा आसन ऐसा है जो घड़ी घड़ी हिल जाता है। कहीं कोई देखने की इच्छा हो गई तो बाबा की वहां से हमारी बुद्धि हट जाती है, तो हमारा स्थान, जो हमारा स्थान है और हमारा जो आसन है वो हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। कैसे हमको शक्तियां मिलेगी? मिल ही नहीं सकती है। कभी हद की इच्छाएं हैं, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, कभी संबंधियों के प्रति हमारा प्यार रह जाता है, तो जिसके साथ रहते उसके साथ हमारा प्यार हो जाता, प्यार नहीं तो कटुता होती है। तो ये हमारी अंदर की जो हमारी संकल्प जो चलते हैं, वो संकल्प हमको आसन पर ठहरने ही नहीं देता है, तो शक्तियां कैसे मिलेगी? तो बाबा कहते हैं ना कई बार कि आप सारे दिन में एक घंटा, डेढ़ घंटा भी कोई मुझे याद नहीं कर सकता है, क्योंकि बैठने की बात नहीं है, इस शरीर को स्थिर करने की बात नहीं है, लेकिन मन को स्थिर करने की बात है। तो तपाना है, जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन को ऐसे ही आप आग पे लगा रख दोगे तो मक्खन घी नहीं बनेगा, उसको एक बर्तन में डालना पड़ता है, और बर्तन में डालने के बाद वो घी बनता है। ऐसे हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए ये जो हमको बर्तन मिला है, कौन सा बर्तन? शरीर रूपी बर्तन मिला है, उसको भी तपाना पड़ेगा। कई बार बाबा कहते हैं ना, ये आंखें होती है धोखा देती है, वो आंखें ऐसी है जो जो भी देखते हैं वहां हमारा संकल्प जाता ही है। अगर कोई कुछ भी करता है लेकिन हमने देख लिया तो हमारा संकल्प कुछ न कुछ उठेगा। तो बाबा कहते साक्षी भाव हमारा रहता ही नहीं है। तो यहां हमें अपनी जो शरीर को तपाना माना, क्या शरीर को तपाना माना कि वो कोई सूरज के सामने खड़े रखने की बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियां जो है उसके ऊपर हमको बहुत अटेंशन देना है कि हमारी कर्म इंद्रिया हमको, क्योंकि ये देह हमको मिला है और देह के 2500 साल से, तो ये देह में 5000 साल से तो देह में ही है, हम देह में ही रहते हैं, तो हमको देह की जो स्मृति है ना बहुत रहती है, घड़ी घड़ी रहती है। अगर कोई नींद में भी कोई हमारा नाम देंगे ना तो फटाफट हम जाग जाएंगे। कोई कहता भाई हम आपको नहीं, वो दूसरे भाई को बोले उसका नाम भी ऐसा ही है, तो इतने हमारे अंदर पक्का हो गया है। देह का अभिमान। और वहां भी जभी जभी अगर कोई बहुत अच्छी रीति हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती, हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी इच्छा पूरी होती है, हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी ट्रेन रुक जानी चाहिए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, कोई कहते हैं कि हमको ये बस स्टैंड पर खड़े हैं कोई हमको ले जाए, हमारी इच्छा पूरी, बाबा को हमने बोल दिया बाबा हमको मदद चाहिए, बाबा की बाबा ने हमारी इच्छा पूर्ति हो गई। हर बारी हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती तो अहंकार आता है कि देखो हमारे हर हम लोगों को कहेंगे हम जो सोचते हैं ना हमारी जो इच्छाएं होती ना पूरी हो जाती है, तो अहंकार आता, अगर नहीं नहीं होती है ना तो फिर क्रोध आता है कि देखो है ना। और हम जो इच्छाएं करते हैं ना और इच्छाओं में कोई बाधा डालते हैं ना तो उसके प्रति घृणा आती है, तो ये हमारे में ये सब रहता है। तो अभी हमारा आसन ऐसा हिलता ही रहता है और हम कहते हैं कि बाबा से हमको सब कुछ मिल जाए तो ये तो नहीं मिलता है, फिर मिलता है लेकिन उसकी जैसे हमारी जितनी भी ताकत है उस जो हमको तो सर्वशक्तिमान से संपूर्ण ताकत लेनी है। तो इच्छा हमारी कैसी होनी चाहिए, सभी इच्छाएं बाबा ने कहा था कि अब मुझे आप याद करोगे, आपको मेरे ऊपर ध्यान रखोगे तो आपकी सारी ते सारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। कोई भी बाप ऐसा नहीं कि बच्चों की इच्छा पूरी ना कर, मैं कर दूंगा, लेकिन आपकी एक इच्छा ये होनी चाहिए कि भाई भगवान जो हमको मिला है, जो पाना था वो पा लिया, बोलते तो है पाना था पा लिया। बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि ये स्मशान है ना, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से दिल क्या लगानी है, पॉइंट तो लिख दिया कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, लेकिन सारे दिन में देखे हम कितना हमारा दिल तो लगता ही है ना। तो इच्छा ऐसी बर्निंग ऐसी होनी चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि एक भाई था ना, मैंने कहीं पढ़ा था, भाई था ना वो गरीब था, एकदम गरीब, लेकिन उसको मैच देखने का बहुत शौक था, ग्राउंड पर मैच देखने का। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ है ही नहीं इसके पास, लेकिन उनके इतनी अंदर से इच्छा थी कि मैं कैसे भी करके कोई भी मैच, कोई भी मैच हो या हॉकी हो, कोई भी हो, लेकिन फुटबॉल मैच हो, कोई भी हो, लेकिन मैच देखना ही है। उसने ठान लिया अंदर, अभी कैसे देखे, पैसा नहीं है, क्या किसी के पास उधार ले या चोरी करे या क्या करे, गरीब है, ये सब धंधा कैसे करेंगे। उसने एक बहुत अंदर से इच्छा थी, उसने क्या किया कि एक टोकरा हाथ में लिया और झाड़ू लिया, और जहां मैच चलती थी ना, मैच चलने वाली थी ना, वहां पहले से पहुंच गया, सबको बोला हटो हटो हटो, सब हटो, मुझे फाइनल टचिंग देनी, हटो हटो। तो सबने बोला इसको यह होगा, सभी ने उसको लगाया होगा। तो अच्छे कपड़े पहन के गया था और झाड़ू हाथ में, टोकरा हाथ में, अच्छा तो सभी हटने लगे, और जैसे हटने लगे मैच शुरू हुई तब तक कर रहे, और फिर एक टोकरा अंदर रख दिया कुर्सी के अंदर और बैठ गया पूरी मैच देखा। फिर दूसरे एक मैच आई तो उसको देखने की तो शौक था ही, क्या करूं अभी। तो उसने बोला कि जा नहीं सकते, बहुत कड़क पहरा था मैच में, तो लेकिन अभी उसने क्या किया कि इंटरवल होता है, इंटरवल होता है थोड़ा लाइट होते सब, तो उसने है ना एक छोटा सा एक इतना छोटी बाल्टी होती ना ऐसा एक लिया और इसमें वो जो कागज था ना पड़ा था ना पिपुड़ा बना दिया, कहते हैं क्या बनाते हैं उसको, वो बना दिया। और उसने है ना तो अंदर सिंग बिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अंदर कचरा ही भरा था, कहता है वहां जाके कहता है कोई लो ये सिंग बहुत अच्छी है, ऐसा करके उसने बहुत नहीं मूंगफली लेकर के गया ना, तो मूंगफली लो सबने बोला उसको बोला होगा इंटरवल हो गया तो, और वो सारे थे सारे है ना कोई लेगा थोड़ी, क्योंकि भाई भाई लोग भी बैठे थे, लेकिन वो है ना तो कोई देना थोड़ी था, उसके पास तो था ही नहीं। तो ऐसे करते करते जल्दी से सब जगह पे पास करके बैठ गए एक जगह पे और देखा। तो इच्छा शक्ति, अगर हमारी इच्छा ऐसी होंगी, तीव्र इच्छा होंगी तो ये तो हमने पढ़ा था एक जगह पे कि एक गरीब था लेकिन उसने कितनी युक्तियां की, और युक्तियों में उसको कोई पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ इच्छा, एकदम तीव्र इच्छा थी। तो हम अपने को पूछे हमारी ऐसी इच्छा है क्या, इतनी तीव्र इच्छा कि देखो यहां तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राजा बनने की इच्छा नहीं है, बाबा से सब कुछ पा ले हम, राजा नहीं बनने का, राजा तो बहुत बनते हैं, द्वापर में भी राजा बनते हैं। राजा बोलेंगे तो बाबा कहते कि देखो गुलजार दादी ने एक बार क्या कहा पता है, राजाएं सब बनेंगे लेकिन कोई गार्डन का राजा होगा कोई कहाँ के राजा होगा, क्योंकि मालिक तो है ही ना वो भी तो। हाँ, तो सबसे पहले इच्छा शक्ति, दूसरी है कल्पना शक्ति, इमेजिन शक्ति कहते हैं ना, विजुअलाइजेशन कहते हैं ना, तो उसकी बाद में करती हूँ। लेकिन तीसरी और चौथी शक्ति है ना, वो है संतुष्टता की शक्ति और सहन शक्ति, उनकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना लेकिन हमको संतुष्टता नहीं होती है। संतुष्टता कुछ भी मिले क्या भी मिले, बाबा ने बोला ना हमको कि बाबा ने कहा जहां भी बिठाओ जो भी खिलाओ जैसे भी रखो, वो बाबा ने हमको कहा है कि जहां भी बिठाए हम जब भी बहनें है ना समर्पित होती है ना तो वो एक प्रतिज्ञा करती है, तो समर्पित बहनों की बात नहीं हम सभी की बात है कि बाबा जहां भी बिठाए जो भी खिलाए, तो हमें मतलब कि बाबा जहां बिठाए जहां खिलाए बस वही हमारी अंदर से भावना हो संतुष्ट रहने का। कुछ भी मिले कहां से भी मिले तो हम कंपेयर करते हैं कि जब मिल जाता है ना तब कंपेयर करते हैं कि इसको अच्छा मिला मेरे को तो अच्छा नहीं मिला है, मतलब कि कंपेयर करते तो हमारी बुद्धि है ना उस समय हमारा मन जो होता है ना वो जो स्थान है ना हमारा आसन जो है ना उसे हिल जाता है। तो संतुष्टता सारे दिन में हम देखे सारे दिन में जो भी चीज सुबह से हमें प्रैक्टिस करनी है क्या कुछ भी हो जाए ना लेकिन हमको संतुष्ट रहना है, मिले ना मिले। इसकी बात ऐसी नहीं है कि आपको अच्छा भोजन नहीं करना है ना, जो भी मिलता है सब करना है, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टता बहुत इंपॉर्टेंट है। और सहन शक्ति माना कि ऐसे नहीं जैसा वैसा जो भी सहन करो, ऐसी बात नहीं है। बाबा ने कहा कि संतुष्टता की शक्ति उसमें सहन शक्ति भी आ जाती है, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। कहते हैं ड्रामा के पट्टे पर, बाबा की वाणी थी ना, बाबा कहते मैं भी कैसा हूं, मैं भी आप जैसा ही, आप जैसे ड्रामा के पट्टे, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है और पार्ट के अनुसार मैं कार्य करता हूं। मुझे जो बोलना है ना वो मुझे नहीं, लेकिन पार्ट जो है मेरा, जो मुझे कहना है वो मेरा पार्ट में जो है वही मैं करता हूं। बाबा इतना निर्माण होकर के कहता है। तो कहने का मतलब कि चार शक्तियां हमारे जीवन में जाइए, चार शक्तियां, लेकिन चौथी शक्ति है इमेजिन शक्ति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इस दुनिया में इन्वेंशन हुई है, साइंटिस्ट की इन्वेंशन हुई है, वो इन्वेंशन कैसे हुई, सबसे पहले तो वो इमेज करते हैं, घर बनाना है, किसी ने बोला कि हमको इसमें ये चाहिए ये चाहिए सब कुछ चाहिए, तो क्या करता है वो सुन लेता है, उसके बाद एक नक्शा बनाता है, नक्शा बना करके वो कहता है कि देखो ये आपका जो घर बनेगा बहुत अच्छा मकान बनेगा या कोई हॉस्पिटल बहुत अच्छी बनेगी, उसको तो लाइन ही लगती है, उसको तो लगता है कि क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बन के तैयार जब होता है तो इमेजिन होती है। एक बार क्या हुआ कि एक बहन थी ना उसको एक गार्डन में ले गए कोई भाई, तो ये आर्टिस्ट था, तो गार्डन में ले गए तो उसने सारा गार्डन का मतलब कि बहुत अच्छी रीति से देखा, दोनों ने देखा। उसके बाद जाकर के सेंटर पर जाकर के वो भाई ने है ना तो एक चित्र बना दिया गार्डन का और बहन को बताया कि देखो ये गार्डन, बोला ये गमला और ये तो कहां था ही नहीं, बोला नहीं था। कितना उसने एक बार देखा, सारे के सारे बुद्धि में रखकर उसने नक्शा बनाया। बाबा हमको कई बार कहते हैं ना स्वर्ग के महल इमेज करो, हम राजधानी को देखो स्वर्ग को देखो, बाबा कहता है ना, तो इमेज बाबा कहते हैं कि जो बाबा सत्य है और बाबा ने हमको सत्य ज्ञान दिया सत्य समझ दिया है, वो हमको परमधाम की बातें बताता है। बाबा हमको कहता है देखो आप कैसे एकदम ज्योतिर्मय बिंदु हो, परमधाम में मेरे साथ रहते हो, मैं भी आप जैसा हूं, परमधाम कैसा है एकदम सुनहरा लाल कलर का है, तो बाबा हमको जो बात बताता है। और मुरली में भी बाबा विजुअलाइजेशन बहुत कराता है, देखो आप बाबा जो भी बोलता है ना वो हम देखते जाएं, जो भी बोलता है वो देखते जाएंगे, तो तो भी बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब कि इमेजिन पावर जितना हम बढ़ाएंगे, कई बार बाबा कहते हैं कि देखो विनाश होने वाला है, दुखों के पहाड़ गिरने वाले बोलते हैं ना, दुख के पहाड़, कहते हैं कि ऐसा विनाश होगा, सब खत्म हो जाएगा, ये कब्रिस्तान हो जाएगा। कभी हमने इसका, जैसे कब्रिस्तान हो जाएगा तो कब्रिस्तान को हमने इमेज नहीं किया, कभी इतना भयंकर विनाश होगा। और उसने बोला कि उस समय जो अशरीरीपन की चीज की स्थिति होंगी लंबे काल से, वो देख सकता है, नहीं तो क्या होगा। कुछ भी होता है तुरंत ही अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं, अंदर से बहुत हलचल हो जाती है। लेकिन अभी बाबा ने हमको सब कुछ पहले से बता दिया है कि आपको ये जब वो टाइम आएगा तभी आप ताकत भर सको। इसलिए वो इमेज करके देखो कि आप में कैसी कैसी ताकत रहती है, और उसके लिए आपको क्या करना है। बाबा ने कहा कि अंतिम अंतिम विनाश की वेला जब आएगी उसके पहले तैयारियां करनी, कैसी तैयारियां करनी है। तो बाबा ने कहा है कि जितनी भी ड्रिल होती है, बाबा हमको देखो 2015 से मुझे लगता है बाबा ने बहुत ड्रिल तो पहले से कराते थे, लेकिन उसके बाद बहुत कराई ड्रिल। ड्रिल करने से क्या होता है, जैसे शारीरिक ड्रिल करते हैं तो शरीर मजबूत होता है, वैसे वो ड्रिल करने से भी तो मन मजबूत हो जाता है, आत्मा में पावर आ जाती है। और बाबा कहता है अशरीरपन, आपको एक बात बताती हूं, यहां है ना एक बार ये जो लिफ्ट है ना लिफ्ट, उसमें एक भाई फंस गया था, हर्षित भाई ने, हाँ वो अभी नहीं है लेकिन उसके बाद तो वो शांतिवन में किचन में काम करते थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ श्रीनिवास भाई भी था, वो दूसरा एक श्रीनिवास भाई सीनियर है वो था, दोनों ही थे। और इस उन्होंने क्या किया, लिफ्ट आती नहीं थी तो ऐसे बाहर ही ऐसा ही किया और लिफ्ट चालू हो गई। चालू हो गई ना तो इसका जो अंदर से है ना ये एकदम दब दब करके खून खून आ रहा था, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं, वो अनकॉन्शियस नहीं हो गया था, लेकिन अशरीरीपन की ऐसी अवस्था बनाई उसने, और उसको ले गए, सारा उसका वो फिर से बनाना पड़ा। उसने अपना अनुभव लिखा था। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां जब हमारी ये अनुभव होगा अशरीरीपन का, जो बाबा ड्रिल कराते हैं वो ड्रिल हम करते रहेंगे तो हमारे में ताकत आएगी, है ना। इसलिए सबसे पहले तो हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा सा युग है, बहुत समय तो चला गया है, अभी तो अंतिम समय चल रहा है। नहीं बाबा देखो ना, 100 साल बाबा ने बोला है तो कितना समय रहा। हाँ बाबा ने तो उस समय भले बोला था, लेकिन अभी ऐसा थोड़ी बोलता है, अभी तो समय हमको बताते हैं। पहले तो है ना क्या होता था कि हम किसी को बोलते थे ना विनाश होना है, 15 साल पहले भी तो लोग हमको बोलते थे क्या बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं बोलो। और अभी सब कह रहे हैं, हम नहीं, दुनिया वाले कह रहे हैं कि हाँ अभी तो देखो कोरोना आया, वो आया, अभी तो दूसरा मतलब कि ऐसे अभी जो युद्ध जो होगा ना वो कोई उससे नहीं होगा, लेकिन जीवाणु फेंकेंगे, क्या क्या करेंगे, है ना, इस प्रकार से मतलब खत्म करेंगे। तो कहने का मतलब कि वो समय में हमें अभी से, ऐसे तो आप हम सब तो करते हैं लेकिन इसमें भी बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि वो जो प्रैक्टिस है ना अशरीरीपन, बाबा कहते हैं कि जब भी काम बहुत करते हो, सारे दिन में बिजी बहुत रहते हो, उस बिजी होते हुए में भी एक मिनट निकाल के करो, एक सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे अशरीरीपन का अनुभव करो कि कैसा होता है नहीं होता। शुरुआत में तो बुद्धि इधर उधर जाती है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बसता है, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल में सभी एक स्थिर हो जाते हैं, और आंगन में तो एक दूसरे को देखते कि बात करते करते चुप हो जाते हैं। शरीर को तो हमने स्थिर कर दिया, लेकिन मन, उसको स्थिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन हमारा जितना जितना स्थिर होगा उतनी उतनी हमारे में ताकत आएगी। इसलिए ये महातपस्या माना, बाबा ने कहा महातपस्या माना क्या, कि हमारा सारा 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 ध्यान जो है ना वो बाबा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एक ही छत्र छाया है हमारी, और वो छत्र छाया ऐसी है जो हर समस्या, हर परिस्थितियों से हमें बचाने वाली है। तो हमारा एक ही छत्र छाया है, उस छत्र छाया में हमेशा में रहना है। दूसरा है कि एक बल, एक भरोसा। उसकी एक बात बताती हूँ, हापुड़ में जब हंगामा हुआ था तो क्या हुआ था कि वहां एक इंजीनियर भाई था, और इंजीनियर भाई ऐसा था, बहुत ही दृढ़ता वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग उस समय नाराज थे, तो उनको है ना तो एक कथे पर बिठाया, और मुख पर है ना जो भस्म होती है ना उस करके काला काला मुंह कर दिया और बिठाया, और है ना तो जो टट्टू था ना उसकी पूंछ पर एक डुगडुगिया लगाई और सारे जगह पे घुमाया। तो भी वो भाई है ना उसको बोला कि आप छोड़ दो इसको, आप संस्था को छोड़ दो। फिर भी वो इतना सामना किया, सब कुछ करने के बाद भी उसने बोला नहीं। एक बलिक भरोसा था कि इतना इंजीनियर, इतना बड़ा इंजीनियर उसको ऐसा घुमाया। हाँ ओ हाँ, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से सामना किया, सांप डाला था किसी के गले में, तो ऐसे ऐसे हंगामा, उन्होंने बहुत हंगामा किया था। और हंगामा जब हुआ ना तभी जगदीश भाई जी को भेज रहे थे, तो बोला नहीं उनको नहीं भेजो, क्योंकि उसको भेजेंगे वहां बहुत ही लोग एकदम ये हो गए हैं। तो सीतू दादी को, मतलब सीतू दादी ने थोड़ा ये कर दिया। कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा हंगामा होता था पहले, तो जितनी भी प्रदर्शनी होती थी ना उसमें क्या होता था, जला ही देते थे। प्रदर्शनी जो होती है ना उसमें 5 दिन की प्रदर्शनी में देर दूसरे ही दिन जला देते थे, इतना करते थे हंगामा। लेकिन उन समय कितना ये था कि ना बाबा का कार्य है, और सब जो बाबा ने कहा, बाबा का संदेश मिला, सब उसमें एकदम सब मान लेते थे और ऐसे ही करते थे, तो एक मत हो जाते थे। यहां भी बाबा जो भी डायरेक्शन देते हैं सभी सेंटर पर जाता है, तो एक मत हो जाते हैं, एक मत हो जाते थे। बाबा का डायरेक्शन है, ईश्वरीय डायरेक्शन है, तो सभी शुरुआत में कहते थे, जब बहनी निकलती थी ना तो बोला ये सब बोलना चलना एक ही है, उनको जैसे एक दूसरे को कॉपी, मतलब इतना बोलना चलना देखना सबकी स्टाइल सबकी एक जैसी है, कि एक ही सांचा में ढले हुए हैं, ऐसे बोलते थे। एक मत, आज कहीं भी जाओगे तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में या बहनें बाहर होंगी तुरंत मालूम पड़ जाता है, भाई लोग जब बाहर जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है, क्योंकि चेहरे अलग होता है। आप देखो अपने को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आप बाहर जाओगे लोगों के चेहरा और हमारे चेहरा में बहुत अंतर है, चेहरे से मालूम पड़ता है। लोगों के चेहरे देखो कैसे कैसे होते हैं, भले कितना भी अप टू डेट हो लेकिन चेहरा देखो, चेहरे में वो चमक ही नहीं है, वाइब्रेशन भी हमारे कितने ही होते हैं। तो दूसरी बात है कि एक तो ड्रामा के पट्टे पर चलना, और एक कल्पना शक्ति की बात भी बता दी, अभी क्या बाकी रहा है, अभी है कि बाबा जो है ना वो ऐसा है कि हमको कोई भी सहारे की जरूरत नहीं है, ऐसे क्यों, क्योंकि बाबा जो बैठा है ये पालना कौन कर रहा है, हमारी पालना कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है ना पालना, है ना, कोई पालना करने के निमित्त जो है वो नहीं, लेकिन पालना बाबा कर रहा है, संभालता। बाबा ने एक बार बोला मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं संभालता हूं, है ना, हाँ तो वही ना पढ़ाई, तो कहने का मतलब कि संभाल भी लेता है हमको, इतना रहने का करने का कितना संभालता है। दूसरा है कि बाबा से हमारा संबंध, सब संबंध होना चाहिए, है ना, बाबा है, बाप भी है, तो बाबा ने एक बार बोला ऐसे जादूगरी करते हो मेरे को बच्चा बना देते हो, बच्चा बना, किसी बाप का बच्चा बोलो आपको लगेगा कैसा तो बाबा कहते मैं तो बच्चा भी बन जाता हूं, इतनी जादूगरी आपके पास, मेरा बच्चा बना देते हो। तो बाबा के साथ हमारा सब संबंध होना चाहिए, जो भी है वो वही है। और दूसरा है कि बाबा जो है ना वो हमारा जो भी हम कार्य करते हैं ना, करण करावनहार बाबा है, उसके पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन कोई भी बात जब आती है ना, हम क्यों क्या कैसे करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है, कोई को भी ऐसा लगता है, वो समय सब हम भी करते हैं, सब भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ड्रामा के पट्टे पर हम नहीं चल रहे हैं। ईश्वरीय श्रीमद जो हमको बाबा ने दी है कि अब साक्षी बन करके चलना है। बाबा ने भी देखो साक्षी बन गया ना, तो अभी बाबा देखो कहता है कि बच्चे मैं आपको वहां बुलाता हूं, अभी मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कहता है। मतलब है साथ में, लेकिन बाबा का पाठ जैसे अव्यक्त में, मतलब कि ऐसे बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया हमको। अभी पढ़ा पढ़ा के होमवर्क देते देते बाबा ने देखा बच्चे 50% तो होमवर्क करते ही नहीं है। फिर ओम में आ जाओ, बराबर है, अभी मेरे घर पे आ जाओ। बाबा कहते हैं कि अपने घर में आओ, तो बाबा के सब संबंध उसके साथ एक रस, एक रस माना क्या, ये सारे रस है ना, इंद्रिय रस जो भी रस है, उससे अच्छे से अच्छा रस है वो है आनंद रस, और हम उसके लिए तड़पते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो इससे ही मिलेगा, ये कोई वस्तु साधन से नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा से ही मिलेगा वो आनंद रस। और वो जब आनंद रस मिलेगा तो पीछे कोई भी प्रकार की इच्छा हमको रहेगी नहीं। अब इच्छा क्यों रहती है, क्योंकि उनसे हमको इतनी प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं, इतनी हाइएस्ट अथॉरिटी है लेकिन हम उसको, इस अथॉरिटी का अनुभव नहीं करते। लेकिन अभी संगम युग हमारे पास है, और समय भी हमारे पास कम है, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है संगम चल रहा है। तो बाबा कहते, एक बार है ना बाबा ने एक संदेश दिया था, उसमें रमूजी संदेश है, बाबा ने कहा था कि सुबह में 3 बजे उठते हैं, माता है तो 2-2.5 बजे उठ करके स्नान करती है, सब कुछ करती है, तो 12 बजे का भोग पहले संदेश ही लगाती थी, तो ट्रांस मैसेज भी आता था। तो एक सेंटर पर है ना, तो बाबा ने एक संदेश भेजा कि देखो जो एकदम सतर्क होकर के बैठते हैं ना, और एकदम सुस्ती करते हैं ना, तो सुस्ती करते हैं उसको मेरा याद प्यार देना। तो कहती है मैं ऐसे कैसे याद प्यार दू, ये जो एकदम एकदम चुस्ती से बैठते उसको याद प्यार ना दू, और ये इसको कैसे दू बाबा मैं तो। बाबा क्या नहीं देना है, बाबा ने समझाया देखो वो माताएं है, भाई है, बहने, वो होती सुबह में उठते हैं 3-3.5 बजे थक जाते हैं, तो थोड़ी सुस्ती आती है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो सतर्क है उसने तो मेरे से ले लिया, लेकिन उनको याद प्यार तो पहुंच जाता है कि मुझे याद करते हैं, उसको मैं याद प्यार देता हूं, लेकिन वो बेचारे उसको याद प्यार देना। तो बाबा कहते, बाबा मतलब कितना, मतलब कि कैसा है दयालु। देखो कोई तो कहे अरे तो नींद करती उसको क्या करना है, तो बाबा ने कहा कि ऐसे, और क्या कहा कि किसी को है ना जब सोते हैं तो कहते हैं ना ये देखो जाग, उसको कौनी मारते हैं, कुछ करते हैं। बोला बाबा ने कि उसने बोला कि देखो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको जगाओ नहीं, कुछ भी नहीं करो, और किसी की कौनी लग जाती है ना तो उसको, वो जो जिसको लगी ना वो समझो बाबा ने थोड़ा टचिंग दिया है, तो उनको गुस्सा नहीं आएगा। तो ये संदेश जो है ना, पहले ऐसा बहुत संदेश आते थे, अलग अलग प्रकार के संदेश आते थे, अभी तो सारे संदेश बंद हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि एक बल, एक भरोसा और सच्ची सच्ची तपस्या हमें वही करनी है कि हमारी चलन और चेहरे में आ जाए, तो लोग मानेंगे, नहीं तो मानते नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई देना चाहिए। बाबा की कल भी वाणी थी ना कि शास्त्रों की बातें तो अलग है, शास्त्रों में कितना भी भरा हुआ हो, लेकिन आपका जो प्रमाण है, बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसको तो कोई नकार नहीं सकता है, उसको तो सब मान्य करेंगे। तो ये तपस्या भी ऐसी है, जब हम ऐसी तपस्या करेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा। और तपस्या कोई देखने, कोई ऐसे प्रदर्शनी का ये नहीं है कि देखो ये कितना तपस्या कर रहा है बाबा के कमरे में बैठ के, कोई दिखाओ नहीं, ये तो गुप्त होनी चाहिए, ऐसी गुप्त होनी चाहिए कि किसी को पता ही ना पड़े कि तपस्या भी कर रहा है। मैं आपको दादी जी का एक एग्जाम्पल देती हूँ, प्रकाशमणि दादी का। मैं उसको एक बार पूछा, दादी आप योग में बैठे नहीं? तो कहती हाँ ये क्या इतना काम होता है, लेकिन मोहिनी बहन ने मुझे बताया दादी की तपस्या ऐसी है, आपने देखा है वो जैसे कितना मामला है, पूरा हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर का सारे दादी के पास बातें आती है, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन दादी है ना जब सो जाती है ना एक संकल्प नहीं, एकदम जैसे सोई और एकदम नींद आ जाती थी। तो मोहिनी बहन मुझे समझाती, देखो ये कैसा है, दादी का देखो, है ना। तो कहने का मतलब कि तपस्या ऐसे नहीं तपस्या की भाई कोई देखे मुझे, चलो मैं हिस्ट्री हॉल में बैठा हूं, बाबा के कमरे में बैठा हूं। लेकिन भले बैठना तो चाहिए, बाबा कहते हैं, लेकिन तपस्या का वो आडंबर नहीं होना चाहिए। तपस्या की वो ये नहीं होनी चाहिए कि देखो ये मैं कितनी तपस्या, 8 घंटा किया, कोई क्या 4 घंटा किया, करो ना कोई बात नहीं है, लेकिन तपस्या का कोई प्रदर्शनी नहीं होती है। तो ये महातपस्या माना कि एक के साथ ही हमारी वृत्ति रहे, एक के साथ ही हमारा सब कुछ रहे। हम कोई भी बात आती है ना तो इसको बोलने जाते, इसको बोलने जाते हैं, नहीं हमको किसको बोलना है। बाबा के मेरी से रूरियान माना क्या, रूरियान माना मैं आत्मा हूं परमात्मा, ऐसी बात नहीं है। रूरियान माना कि अपनी जो सुबह से उठते हैं और रात तक जो जागते हैं, रात तक सोते हैं, तब तक आप देखो जो भी आपके जीवन में बातें आती है, जो भी बातें अच्छी बातें जैसी बातें, जैसे कोई दोस्त होता है ना, हम कैसे सुनाते हैं उसको, बस उसको ऐसे सुना दो। तो बाबा की यही रूरिहान है ना। रूरिहान माना कि मतलब कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बाबा से बातें करते रहो, जैसे छोटा बच्चा कैसा बोलता है बाबा को, अपना पिता को कहता है, मतलब कि किस छोटी छोटी बातें करता है। तो बाबा कहते हैं मेरे से हर बात, मेरे से कोई भी बात छिपाओ नहीं, ऐसे तो छिप कुछ भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मेरे से सभी बातें करो, जो भी कहना मुझे कहो, नहीं तो क्या होगा। द्रौपदी का मिसल बताया था ना कि सारे लोगों को पूछ पूछ करके फिर कृष्ण को याद किया। तो रुक्मणी उसको पूछती है ना कि आपने आप जल्दी से जाना चाहिए ना, तो कहते हैं कि मैं देखता था किस किस को याद करता है, जब मुझे याद करेंगे तो मैं जाऊंगा। बाबा भी कहता है तुमने अगर किसी का हाथ पकड़ा ना, किसी का सहयोग लिया ना, मैं वहां से हट जाऊंगा। किसी का भी आप देहधारी को आप अपना बनाओगे या देहधारी का आप साथ लोगे या देहधारी से अपना ये रखोगे ना, तो मैं वहां से एक मिनट भी नहीं ठहरूंगा। क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अभी मैं कहां से इसको वापिस जो भी। तो कहने का मतलब कि एक बल, एक भरोसा, बाबा के साथ हमारी सब प्रकार की बातें हो, रूरिहान हो, और सारा कहते ना नैया जी उसको सौंप दो वो चलाएगा। तो बाबा को हम अपनी ये जो नाव है वो नहीं देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि बस अभी हमें एक ही सहारा है हमारा, और एक ही बात है, एक ही हमारे लिए है। तो हमें जब ये मालूम पड़ जाएगा कि बस हमको अभी और कुछ नहीं करना है, बाबा की जो श्रीमत मिलती है, बाबा की जो आज्ञा मिलती है, और बाबा की जो भी यज्ञ में जो भी होता है उसमें हमको क्या करना है, बाबा जो कहे, श्रीमत बाबा की श्रीमत पर जैसे ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं वैसे ड्रामा के पट्टे की तरह श्रीमत पर चलना है। बाबा की जो श्रीमत तो बहुत होती है, लेकिन मुरली में जो आती है बहुत नहीं आती, दो दो तीन तीन आती, अगर हम उसको भी अगर एक को भी ले लेना तो भी हम हमारा जीवन में बहुत आनंद आता है। तो आनंद के लिए भी बाबा की मुरली, पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई के बिना तो, पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, पढ़ाई माना कि रोज जो हम पढ़ते हैं ना वो हमको जीवन में लाना है। जीवन में एक चीज भी लाएंगे ना तो भी हमारा जीवन धीरे धीरे एक 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 करते बढ़ता जाएगा। तो ये महातपस्या माना क्या, महातपस्या माना हम जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए, एक बल एक भरोसा होना चाहिए, हमारी इच्छाएं इतनी इतनी बाबा के प्रति ही, बस हमको ये मिला है तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, बस उसको ही हमको बस जी जान से प्यार करना है, उसमें खो जाना है और उसको ही सामने रखना है, सारे दिन उसको ही देखते रहना है। जैसे कोई व्यक्ति को किसी से प्यार होता है तो क्या होता है, वो उसका ही सपना देखता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी आपका क्या हूं, सब कुछ हूं, मेरे को देखते रहो। कई बार बाबा कहते हैं लक्ष्मीनारायण के फोटो भी रखो, ये आपका लक्ष्य है, लक्ष्य को याद रखो। तो ये सारी तपस्या हमारी यही है कि बाबा के सिवा हमको कोई दिखाई ना दे। ओम शांति।
लगन बस एक यही, हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस ले